ये आकाशवाणी है, अब आप अपर्णा सिंह से समाचार सुनिए। वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद ने स्टील, लोहा और एल्युमिनियम निर्मित दूध के डिब्बों पर एक समान 12% जीएसटी लगाने की सिफारिश की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने आज नई दिल्ली में 53वें जीएसटी परिषद की बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में घोषणा की कि अखिल भारतीय स्तर पर बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण शुरू होने जा रहा है। इससे सरकार को फर्जी चालान के जरिए किए गए फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट दावों से निपटने में मदद मिलेगी। वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि भारतीय रेलवे द्वारा यात्रियों को उपलब्ध कराई जा रही कई सुविधाओं को जीएसटी के दायरे से बाहर कर दिया गया है। वित्त मंत्री ने बताया कि सरकारी मुकदमे कम करने के उद्देश्य से परिषद ने विभाग द्वारा अपील दायर करने के लिए जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के लिए 20 लाख रुपए, उच्च न्यायालय के लिए 1 करोड़ रुपए और उच्चतम न्यायालय के लिए 2 करोड़ रुपए की सीमा की सिफारिश की है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा है कि समय पर कर हस्तांतरण, वित्त आयोग से अनुदान और जीएसटी क्षतिपूर्ति बकाया के माध्यम से राज्यों को केंद्र के समर्थन का उद्देश्य राज्यों में विकास को बढ़ावा देना है। वित्त मंत्री ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय बजट 2024-25 के लिए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों के साथ बजट पूर्व परामर्श बैठक की अध्यक्षता करते हुए राज्यों से केंद्र सरकार की राज्य पूंजी निवेश विशेष सहायता योजना का लाभ उठाने को कहा। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र सोमवार से शुरू होगा। इस सत्र में नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी। अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किए गए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सांसद भर्तृहरि महताब सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। लोकसभा के नए अध्यक्ष का चुनाव 26 जून को होगा, जबकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 27 जून को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। राज्यसभा का सत्र 27 जून से शुरू होगा। संसद सत्र 3 जुलाई को सम्पन्न हो जाएगा। भारत और बांग्लादेश ने आज विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए और कई समझौता ज्ञापनों का नवीनीकरण किया। इन समझौतों में डिजिटल और हरित भागीदारी, समुद्री सहयोग, स्वास्थ्य और चिकित्सा, अंतरिक्ष सहयोग, रेलवे संपर्क, समुद्र विज्ञान, आपदा प्रबंधन और मत्स्य पालन के क्षेत्र शामिल हैं। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना के बीच हुई बातचीत के बाद इन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। एक प्रेस विज्ञप्ति में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बांग्लादेश भारत की पड़ोसी प्रथम और एक्ट ईस्ट नीति का आधार स्तंभ है। एक प्रेस वक्तव्य में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत को विश्वसनीय मित्र और क्षेत्रीय भागीदार बताया। बाद में शेख हसीना ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए की परीक्षाओं के पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष संचालन सुनिश्चित करने के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉ के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति को एनटीए की परीक्षा प्रक्रिया में सुधारों की सिफारिश करने का दायित्व सौंपा गया है। समिति मौजूदा प्रक्रिया का मूल्यांकन करेगी और वर्तमान शिकायत निवारण तंत्र का आकलन करेगी। समिति से 2 महीने के भीतर रिपोर्ट देने को कहा गया है। समिति के गठन के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि छात्रों का हित और उज्जवल भविष्य हमेशा सरकार की उच्च प्राथमिकता रहेगी। अवैध गतिविधि रोकथाम अधिनियम यूएपीए के तहत गठित न्यायाधिकरण ने मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर, मसरत आलम गुट और तहरीके हुर्रियत जम्मू और कश्मीर पर 5 साल का प्रतिबंध लगाने के केंद्र के फैसले की आज पुष्टि कर दी। केंद्रशासित प्रदेश में राष्ट्र विरोधी और अलगाववादी गतिविधियों में शामिल होने के कारण दोनों गुटों को पिछले वर्ष दिसंबर में यूएपीए के तहत 5 साल के लिए गैर कानूनी घोषित किया गया था। एटिंगा में आईसीसी टी20 क्रिकेट विश्व कप के सुपर 8 में भारत और बांग्लादेश के बीच मैच जारी है। भारत ने बांग्लादेश को जीत के लिए 197 रन का लक्ष्य दिया है। लक्ष्य का पीछा करते हुए बांग्लादेश की टीम ने 5वें ओवर में 1 विकेट पर 37 रन बनाए हैं। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।